लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम लोगों के मूल और स्मृति का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व के समस्त बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका अनुभव और ज्ञान युवाओं को भविष्य की ओर आशा और जिम्मेदारी के साथ देखने में मदद करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गॉडियम सुसमाचार की खुशी पर चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गॉडियम सुसमाचार की खुशी प्रकाशित की। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करते जो सदैव प्रेरिताई के कार्य हेतु बुलाई गई है। एवेंजेली गॉडियम संत पापा फ्रांसिस के परम धर्माध्यक्ष काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कर्तव्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओं, यदि हम सारी चीजों को प्रेरितिक कुंजी के आधार पर निहारते तो यह संदेश को प्रसारित करने के तरीकों को प्रभावित करेगा। वर्तमान दुनिया में त्वरित संचार और कभी कभी संचार माध्यमों के द्वारा इसकी प्रस्तुति में पक्षपात हमारे संदेश को, जिसे हम प्रसारित करने की चाह रखते हैं, उसे विकृत करने या उसके कुछ पहलुओं को गौण करते हुए अधिक जोखिम उत्पन्न करता है। इस भांति कुछ मुद्दे जो कलीसिया की नैतिक शिक्षा के अंग हैं, अपने संदर्भ से बाहर निकाल दिए जाते, उन्हें अपना ही एक अलग अर्थ दिया जाता है। यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब हमारा संदेश, जिसे हम घोषित करते, गौण अर्थ से मिलती जुलती है, अपने में उस संदेश को वहन नहीं करता जो ख्रिस्त के संदेश का केंद्र बिंदु है। हमें यथार्थवादी होने की जरूरत है और इस बात को हल्के अर्थ में नहीं लेना है कि संदेश के श्रोतागण हमारे संदेश की परिपाटी को समझते हैं या वे सुसमाचार के केंद्र बिंदु से अपने को संयुक्त करने के योग्य हैं, जो संदेश के अर्थ को उसकी सुंदरता और उसे आकर्षक बनाता है। श्रोताओं, प्रेरिताई की हमारी रूपरेखा और एक शैली अपने में इस बात के लिए जुनूनी होना नहीं, जहां हम कलीसिया के बहुत सारे धर्म सिद्धांतों को निरंतर लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हों। जब हम अपने लिए प्रेरितिक लक्ष्य और एक प्रेरिताई की शैली को चुनते हैं जो किसी का तिरस्कार किए बिना सबों के लिए पहुंचता है, तो ऐसी परिस्थिति में संदेश को जरूरी बातों पर केंद्रित करना होगा जो अति सुंदर, शानदार, अति आकर्षक और साथ ही अति आवश्यक है। संदेश को सरल बनाना जबकि इसकी गहराई और सच्चाई को नहीं खोना, इस तरह यह और भी अधिक सशक्त और आश्वस्त करने वाला हो जाता है। सभी सच्चाई का रहस्योद्घाटन उस दिव्य स्रोत से होता है और हमें उन्हें उसे विश्वास से विश्वास करने की जरूरत है। यद्यपि कुछ चीजें सुसमाचार के सार को अभिव्यक्त करने हेतु अधिक महत्वपूर्ण हैं, इनके मूलभूत आधार में यह उभर कर आता है कि यह ईश्वर का मुक्तिदायी प्रेम है जो हमारे लिए यीशु ख्रिस्त में व्यक्त किया गया है जो मरकर जी उठे हैं। इस संदर्भ में द्वितीय वैटिकन महासभा यह व्याख्यान देती है कि ख्रिस्तीय धर्म सिद्धांत में एक क्रम है या सच्चाइयों का एक पदानुक्रम, क्योंकि वे ख्रिस्तीय विश्वास के मूल सिद्धांत से संबंध में भिन्न हैं। यह धर्म सिद्धांत पर विश्वास के संबंध में उतना ही सच है जितना कि पूरी कलीसियाई शिक्षा के संबंध में, जिनमें उनकी नैतिक शिक्षा भी शामिल है। श्रोताओं, संत थॉमस अक्विनस ने कलीसिया के नैतिक शिक्षण के बारे में कहा कि इसकी स्वयं की अपनी एक पदानुक्रम है सद्गुणों में और उन कार्यों के संबंध में जो उसे आगे बढ़ाती है। इन सारी चीजों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेम के द्वारा हम विश्वास को कैसे व्यक्त करते हैं, अर्थात विश्वास का महत्व जो प्रेम से अनुप्रेरित है। प्रेम के कार्य जिसे हम अपने पड़ोसियों के लिए करते हैं अपने में पवित्र आत्मा द्वारा आंतरिक रूप में मिली कृपा का एक सर्वोच्च बाह्य अभिव्यक्ति है। नए नियम का आधार हमारे लिए पवित्र आत्मा की कृपा है जो विश्वास को कार्यों में व्यक्त करता है। संत थॉमस हमारे लिए इस बात की व्याख्या करते हैं, जहां बाह्य कार्य का सवाल है, करुणा हमारे लिए गुणों में सबसे बड़ा है क्योंकि इसके चारों ओर अन्य दूसरे सारे गुण परिक्रमा करते हैं और इससे भी बढ़कर यह दूसरों की कमियों को भर देता है। यह श्रेष्ठ गुण की विशेषता है और इस तरह यह हमारे लिए ईश्वर की करुणा का प्रकटीकरण है जिसके माध्यम से उनकी सर्वशक्तिमता अपनी श्रेष्ठता में प्रकट होती है। श्रोताओं, कलीसियाई धर्म सभा की शिक्षा के आधार पर प्रेरिताई के परिणामों को निकालना अपने में महत्वपूर्ण है जो हमारे लिए कलीसिया की एक प्राचीन आस्था को अभिव्यक्त करती है। पहला, सुसमाचार के प्रचार हेतु हमें यह कहने की जरूरत है कि अनुपात की उचित भावना को बनाए रखना होगा। यह उस आवृत्ति में देखा जा सकता है जहां कुछ निश्चित मुद्दों को लाया जाता है और प्रवचन के दौरान उन विषयों पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कलीसियाई धर्म विधि काल के दौरान एक पुरोहित आत्म संयम के बारे में 10 बार जिक्र करता लेकिन करुणा और न्याय के बारे में सिर्फ 2 या 3 बार कहता तो यह असंतुलन को व्यक्त करता है। इस भांति विशेषकर वे गुण जिन पर जोर देते हुए धर्म शिक्षा देने की जरूरत है उन्हीं का अनदेखा किया जाता है। ऐसा ही होता है जब हम नीति नियमों और कृपा कलीसिया के बारे में अधिक कहते वहीं यीशु ख्रिस्त के बारे में कम जिक्र करते हैं। संत पापा के बारे बहुत कुछ कहते वहीं ईश वचन के बारे में कम बोलते हैं। श्रोताओं, गुणों में जिस भांति एक तरह से संगठित एकता बनी रहती है अर्थात जिन्हें हम ख्रिस्तीय आदर्श से पृथक नहीं कर सकते हैं जिससे कोई भी सत्य को नकारा नहीं जा सकता है। सुसमाचार के संदेश की अखंडता अपने में विकृत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही हर सच्चाई जब ख्रिस्तीय संदेश की पूर्ण एकता से संयुक्त की जाती तो यह बेहतर रूप में समझी जाती है और इस संदर्भ में सभी सच्चाइयां अपने में महत्वपूर्ण और एक दूसरे को आलोकित करती हैं। जब प्रवचन सुसमाचार के प्रति निष्ठापूर्ण होता तो कुछ सच्चाइयों के सार स्पष्ट रूप से उभर कर आते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि ख्रिस्तीय नैतिकता रूढ़िवाद या आत्मत्याग या केवल एक व्यावहारिक दर्शन शास्त्र या पापों और दोषों का एकमात्र रूप नहीं है। इन सारी चीजों से बढ़कर सुसमाचार हमें प्रेमी ईश्वर को प्रत्युत्तर देने जो हमें बचाते हैं, जो हमें दूसरों में अपने को देखने और अपने आप से बाहर जाते हुए दूसरों की भलाई की खोज करने को बुलाते हैं। किसी भी परिस्थिति में हमारे लिए यह निमंत्रण धूमिल ना हो। सभी गुण इसी प्रेम के उत्तर में क्रियाशील हैं। यदि यह निमंत्रण तीव्रता और आकर्षक रूप में प्रसारित नहीं होता तो कलीसिया की नैतिक शिक्षा ताश के पत्तों से बने घर की तरह होकर रह जाती है और यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसका मतलब यह होगा कि यह सुसमाचार का प्रचार नहीं बल्कि विशिष्ट वैचारिक विकल्पों के आधार पर कुछ सैद्धांतिक या नैतिक बिंदु का प्रचार है। इस भांति संदेश अपनी ताजगी खोने की स्थिति में रहती जो सुसमाचार की खुशबू को खत्म कर देती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
प्रेम संचार गाए जा, गाए जा। शुभ संदेश सुनाएंगे,
सुनाएंगे,
प्रभु का प्यार फैलाएंगे,
फैलाएंगे,
उसी की ज्योति जलाएंगे,
जलाएंगे,
अंधकार दूर भगाएंगे,
भगाएंगे। वो कैसे?
वो है प्रेम संचार। सुर संगीत सिखाएंगे, ढोलक तबला बजाएंगे,
त्रिकिटा
भारतीय नृत्य करेंगे, नुक्कड़ नाटक
रचाएंगे। वो कैसे?
वो है प्रेम संचार।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। संत पापा फ्रांसिस ने सभी आदिवासियों को शुभकामनाएं दी हैं तथा उनके मूल्यों की सराहना की है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है, आदिवासी लोगों के बीच परिवार और समुदाय की गहराई से वास्तविक भावना कितना मूल्यवान है, यह कितना महत्वपूर्ण है कि युवा और बूढ़े लोगों के बीच संबंध को ठीक से विकसित किया जाए तथा पूरी सृष्टि के साथ एक स्वस्थ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखा जाए। रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्म अध्यक्ष माननीय बिशप फेलिक्स टप्पो येसु समाजी ने भी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सभी आदिवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित की हैं। उन्होंने महाधर्म प्रांत के यूट्यूब चैनल के माध्यम से 9 अगस्त को अपने संदेश में कहा, सभी आदिवासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं एवं जोहार देता हूँ। उन्होंने कहा, प्रत्येक आदिवासी को आदिवासी होने के नाते आत्मसम्मान एवं गौरव होना चाहिए। उन्हें इस बात का गर्व होना चाहिए कि वे आदिवासी हैं। इसके साथ साथ उन्हें अपने पुरखों को भी याद रखना चाहिए। हम जो कुछ भी हैं, हमारे पुरखों के बदौलत हैं। उन्होंने जंगल झाड़ और ऊंची नीची जमीन को बहुत परिश्रम करके खेती बाड़ी के लायक बनाया और यहाँ की हरियाली को बनाए रखा। हम उनके कठिन परिश्रम के लिए उनको धन्यवाद देते हैं और उनका आदर सम्मान करते हैं। महाधर्म अध्यक्ष ने कहा कि आदिवासियों में बहुत अच्छे मूल्य और संस्कृति हैं, जैसे सामुदायिक जीवन, आपसी प्रेम, एकता, सौहार्द, सम्मान और मदद की भावना। उन्होंने कहा कि इन संस्कृतियों और मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने आदिवासियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की भी याद दिलाते हुए उनके लिए सजग रहने की सलाह दी तथा चौकस रहने को कहा, ताकि वे बाहरी ताकतों के द्वारा अत्याचार और शोषण के शिकार ना हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदिवासी वनवासी नहीं हैं और स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने पर उनकी आदिवासियत समाप्त नहीं हो जाती। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, समय का परिवर्तन हो रहा है और उसके अनुसार युवाओं को आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्हें प्रगति करना है और यह तभी संभव होगा जब वे पढ़ाई लिखाई में अपने आप को समर्पित करेंगे। अगर युवा भटक जाता है तो वह अपना विनाश करता और संपूर्ण समाज को विकृत कर देता है। अतः उन्होंने आदिवासी युवाओं को सलाह दी कि वे अपने आप, परिवार और समाज की प्रगति के लिए अपने आप को तैयार करें। अंत में उन्होंने सभी आदिवासियों को पुनः शुभकामनाएं देते हुए याद दिलाया कि वे अपनी पहचान एवं सम्मान को बनाए रखें। स्वर्गीय कार्डिनल जोसेफ टोम्को का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार 11 अगस्त को पूर्वाहन 11 बजे संत पेत्रुस महायज्ञ घर में संत पेत्रुस के सिंहासन को समर्पित वेदी पर संपन्न होगा। इस अवसर पर क्रिस्त्याग अनुष्ठान कार्डिनलों, महाधर्मदर्शों एवं धर्मदर्शों के साथ कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जुआनी बत्तीस्ता रे करेंगे। क्रिस्त्याग के अंत में संत पापा फ्रांसिस अंतिम संस्कार की धर्मविधि का अनुष्ठान करेंगे। सुसमाचार प्रचार के लिए गठित परमधम पीठ धम संघ के सेवानिवृत्त अध्यक्ष कार्डिनल जोसेफ टोम्को का निधन सोमवार 8 अगस्त को सुबह 5 बजे रोम में हुआ। स्लोवाकिया मूल के कार्डिनल टोम्को 98 वर्ष के थे। इसराइल ने सोमवार को गाजा की सीमा क्रॉसिंग को फिर खोल दिया, जिसके बाद आतंकवादी इस्लामिक जिहाद समूह के साथ मिस्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ, जिसने एक साल से अधिक समय तक अस्थिर फिलिस्तीनी तटीय क्षेत्र के आसपास लड़ाई के सबसे गंभीर प्रभाव को समाप्त कर दिया। गाजा के लोग सोमवार को 56 घंटे की हिंसा की कीमत गिन रहे थे, जिसकी शुरुआत तब हुई थी जब इसराइली हवाई हमले में एक वरिष्ठ इस्लामिक जिहाद कमांडर मारा गया था। संघर्ष में करीब 44 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 15 बच्चे हैं और करीब 100 लोग घायल हुए हैं। इसराइल ने इस हमले को ईरानी समर्थित समूह द्वारा अचानक किया गया हमला कहा। जवाबी कार्रवाई में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इसराइल पर 1000 से अधिक रॉकेट दागे, जिससे दक्षिणी क्षेत्रों एवं तेल अवीव सहित मुख्य शहरों के निवासियों को आश्रयों में भेज दिया गया था। 3 दिनों के संघर्ष के अंत के लिए मिस्र की मध्यस्थता द्वारा सोमवार को एक नाजुक युद्ध विराम किया गया है। युद्ध विराम किए जाने पर इसराइल ने कहा कि वे मानवीय आवश्यकताओं के लिए गाजा में क्रॉसिंग को आंशिक रूप से फिर खोल रहे हैं और स्थिति शांत बने रहने पर वे इससे पूरी तरह खोल देंगे। हिंसा के कारण एक चौतरफा युद्ध की आशंका थी, किंतु यह अंत में समाप्त हो गया क्योंकि गाजा के सत्तारूढ़ हमास समूह किनारे रहे, क्योंकि इसराइल ने इस्लामिक जिहाद के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। रविवार को जारी एक बयान में निकारागुआ के कार्तिक धर्माध्यक्षों ने मतागाल्पा धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष रोनाल्डो जोश अल्वारेस के प्रति अपना भ्रातृत्वपूर्ण सामीप्य व्यक्त किया है, जो कथित तौर पर हिंसा भड़काने के आरोप में गुरुवार से अपने आवास में नजरबंद किए गए हैं। मुखर रूप से बोलने वाले धर्माध्यक्ष को 4 अगस्त से ही अपने आवास से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, जब पुलिस ने उन्हें पिछले सप्ताह 5 स्थानीय कार्तिक रेडियो स्टेशनों को सरकार द्वारा बंद किए जाने की निंदा करने पर ख्रिस्त्याग अर्पित करने हेतु स्थानीय महागिरजाघर जाते समय रोक दिया था। पुलिस ने धर्माध्यक्ष अल्वारेज पर राष्ट्रपति डैनियल ओर्तेगा की सैंडिनिस्ता सरकार और स्थानीय कलीसिया के बीच बढ़े तनाव के संदर्भ में हिंसा के कृत्यों को उकसाने और देश को अस्थिर करने के लिए मीडिया एवं सोशल नेटवर्क का कथित रूप से प्रयोग करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर मतागाल्पा के धर्माध्यक्ष ने अधिकारियों से अपील की है कि वे इस उत्पीड़न को रोकें तथा धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करने का आग्रह किया है। रविवार को जारी एक बयान में निकारागुआ के धर्माध्यक्षों ने कहा है कि उनका हृदय धर्माध्यक्ष अल्वारेज की दयनीय स्थिति से प्रभावित है। उन्होंने याद किया है कि कलीसिया शांति के सुसमाचार की घोषणा करती है तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के सहयोग के लिए खुली है। निकारागुआ की कलीसिया 7 से 15 अगस्त को जब राष्ट्रीय मरियम सम्मेलन मना रही है, तब धर्माध्यक्षों ने विश्वासियों को निमंत्रण दिया है कि वे रोजरी माला विनती करें और निष्कलंक भागवन की माता मरियम से निकारागुआ की रक्षा हेतु प्रार्थना करें। मानागुआ के महाधर्माध्यक्ष ने भी धर्माध्यक्ष अल्वारेज एवं मतागाल्पा की कलीसिया को सामीप्य का एक संदेश भेजा है, जब वे पुलिस की कार्रवाई के कारण कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तथा आशा व्यक्त की है कि स्पष्ट एवं सम्मानजनक बातचीत आपसी समझदारी के मार्ग को खोल सकती है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।